ये आकाशवाणी दिल्ली है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की विषय वस्तु निर्धारित करने में सर्वोच्च होते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आचार्य विद्यानंद स्वामी की जयंती पर विद्यानंद प्रज्ञापीठ का लोकार्पण किया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली में लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। सोने की कीमतें आज ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गई। 24 कैरेट का सोना पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की विषय वस्तु निर्धारित करने में सर्वोच्च होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने जोर दिया कि संसद सर्वोच्च है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान में संसद के ऊपर किसी भी प्राधिकरण की कल्पना नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि नागरिकों ने संविधान के तहत अपने प्रतिनिधियों को चुना है ताकि वे अपनी अभिव्यक्ति इच्छाएं और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करें और चुनाव के दौरान ये प्रतिनिधि जवाबदेह होते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आचार्य विद्यानंद स्वामी की जयंती पर विद्यानंद प्रज्ञापीठ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस गुरुकुल का उद्घाटन करना उनके सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुनि जी ने देश की आजादी और समाज के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में समाज एकजुट हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनकी अध्यक्षता में आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में दिल्ली विधानसभा भवन के संरक्षण और संवर्धन हेतु एक समग्र विकास योजना पर चर्चा की गई।
इस योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA 3 सप्ताह के भीतर एक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके साथ ही परियोजना की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी जिसमें IGNCA राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली नगर निगम विधानसभा सचिवालय सहित अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। विधानसभा परिसर में एक भव्य लाइट और साउंड शो आयोजित करने की योजना पर भी चर्चा की गई जो इसकी ऐतिहासिकता और लोकतांत्रिक महत्व को उजागर करेगा। बैठक में विधानसभा के इतिहास पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री और भविष्य में एक संग्रहालय की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में विशेषज्ञों ने पारंपरिक स्थापत्य को संरक्षित रखते हुए आधुनिक तकनीकों के संयोजन का सुझाव दिया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा को जीवंत विरासत स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और आम जनता को इसके भ्रमण का अवसर मिलेगा जिसमें देश की लोकतांत्रिक जड़ों से सीधे जुड़ सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक महत्ता को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली में लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने जा रही है। श्री सिंह ने कहा कि दूर दराज इलाकों में भी ये बसें चलेंगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि महिलाओं के लिए बस में यात्रा मुफ्त है।
ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने जो इलेक्ट्रिक बसों को चालू करने का आज स्टार्ट किया है, हर उस आदमी को, हर उस जन लोग को जहां तक बसें नहीं पहुंचती वो बसें पहुंचेंगी और अच्छी सुविधा से पहुंचे, अच्छी कनेक्टिविटी से पहुंचे। और पॉल्यूशन में ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी भी कमी है, यही हमारी सोच है। दिल्ली में जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां बसें, चाहे 9 मीटर की चाहे 12 मीटर की कनेक्टिविटी की बसें रहेंगी, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अभी 2000 बसें हम लगा लेंगे। 200% महिलाओं के लिए फ्री है।
धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय शोक की वजह से दिल्ली सरकार ने देवी योजना के तहत आज होने वाली इलेक्ट्रिक बसों की लॉन्चिंग को स्थगित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि इसकी नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। विश्व में पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन के सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत उन्होंने दिल्ली के नागरिकों से अपील की कि वे आज रात 8:08 तक केवल 5 मिनट के लिए अपनी बिजली बंद कर पर्यावरण के प्रति जागरूक दर्शाएं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने दिल्लीवासियों से आग्रह किया कि सभी नागरिक इस विरासत की रक्षा करें जिसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सजोना है।
समाज का एकजुट होकर आगे आना और ऐसी सुविधाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए लेके आना, ये बड़ा सुकून का विषय है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का हर नागरिक यदि देश की प्रगति में थोड़ा थोड़ा भी सहयोग करे तो ये मान लीजिए कि देश जो है रोजाना 140 करोड़ कदम आगे बढ़ जा रहा है। तो जब सब लोग करेंगे तो आगे का रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा, देश आगे बढ़ पाएगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नए कार्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने में प्रेरित करता है। उन्होंने नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर विद्यार्थी परिषद को शुभकामनाएं दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय निक्टर ने बेहतर निगरानी और आपदा प्रबंधन के लिए आज गुड़गांव में एक अभिनव एरोस्टेटिक ड्रोन का अनावरण किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि यह भारत में अपनी तरह का पहला ड्रोन है जिसे वन निगरानी, वन्यजीव निगरानी, सीमा और आपदा निगरानी अनुप्रयोग के लिए तैनात करने के लिए उच्च सहनशीलता और एरोस्टेटिक रूप से स्थिर क्षमताओं के साथ डिजाइन किया गया है। एयरबोटिक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित तकनीक का लाइव प्रदर्शन आज गुड़गांव में आयोजित किया गया।
एरोस्टेटिक ड्रोन उड़ान भरने के लिए उछाल और वायुगतिकीय दोनों तरीकों से जमीन से ऊपर उठते हैं। निगरानी के लिए यह ड्रोन बिना किसी शोर शराबे के लगातार 4 घंटे से अधिक समय तक हवा में तैर सकते हैं। सिस्टम को मॉड्यूलर बनाया गया है जिससे यह जमीन पर किसी भी वाहन के साथ जोड़े जा सकते हैं या किसी भी स्थान पर लगाए जा सकते हैं। एरोस्टेटिक ड्रोन दूर दराज के इलाकों में या आपातकालीन स्थितियों के दौरान अस्थायी संचार सुविधा प्रदान करने के लिए भी काम कर सकते हैं। इस तरह इनके माध्यम से उन जगहों पर संपर्क सुनिश्चित किया जा सकता है जहां पारंपरिक बुनियादी ढांचे की कमी हो या किसी तरह की दिक्कत हो। यह अनधिकृत ड्रोन गतिविधियों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए सिस्टम से भी जोड़े जा सकते हैं जिससे हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों जैसे संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग शहरी क्षेत्रों में यातायात की स्थिति पर निगरानी रखने, यातायात प्रबंधन प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने और वास्तविक समय में सूचना हासिल करके भीड़ भाड़ को कम करने में सहायता के लिए भी किए जा सकते हैं। पल्लवी परमार की रिपोर्ट के साथ आदर्श प्रादेशिक समाचार।
भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने आज महत्वपूर्ण इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवाओं IoT के वर्गीकरण के लिए मंत्रालयों और विनियामक निकायों की सहायता के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया। ट्राई ने संचार विभाग को अपनी सिफारिशों में महत्वपूर्ण IoT सेवाओं के वर्गीकरण का उल्लेख किया है। इसमें यह भी सिफारिश है कि किसी सेवा को केवल तभी महत्वपूर्ण इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवा के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब वे एक विशेष ट्विन टेस्ट पास कर ले। अन्य सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट try.gov.in पर उपलब्ध हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संसद भवन में चल रही है। 39 सदस्यीय समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य शामिल हैं। पहले सत्र में समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा भारत की 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष डॉ. बी.एस. चौहान के साथ बातचीत करेगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव पर JPC के अध्यक्ष PP चौधरी ने कहा कि ये राष्ट्रीय हित में है और इससे अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।
वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में बड़ा इजाफा होगा और जो असुविधा होती है इनडायरेक्ट नुकसान होता है, चाहे हमारे एजुकेशन सिस्टम को हो, बच्चों को हो, चाहे टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट हो। अगेन एंड अगेन एक साल में 5-6 इलेक्शन होते हैं और चाहे गवर्नेंस का हो और चाहे लॉजिस्टिक का हो, सारी चीजें हम देखें तो करीब 1.5% GDP का साइमल्टेनियस इलेक्शन से देश को फायदा होगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। आयोग ने नियुक्ति के लिए कुल 1009 उम्मीदवारों की सिफारिश की है, जिनमें 725 पुरुष और 284 महिलाएं हैं। शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा की लिखित परीक्षा पिछले साल सितंबर में आयोजित की गई थी, जिसके बाद इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच साक्षात्कार हुए थे। इस परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली मार्गी चिराग शाह ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वे सेवा में आने के बाद महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये सफलता उम्मीदवारों की लगन, दृढ़ता और कड़ी मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों ने सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा श्रीमती गुप्ता ने इस बार सफलता प्राप्त नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों को भी हिम्मत नहीं हारने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं, उनके लिए अवसर असीमित होते हैं। सोने की कीमतें आज ऐतिहासिक ऊंचाई तक पहुंच गई। आज के कारोबार में 24 कैरेट का सोना पहली बार 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दुनिया में बढ़ते राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की मांग में काफी तेजी बनी हुई है। कुछ दिनों के बाद अक्षय तृतीया का पर्व है, जिसकी वजह से कारोबारी मांग बढ़ी हुई है। भारत के सराफा और आभूषण व्यापारियों के संगठन IBJA ने बताया कि 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना आज 96,670 रुपए से 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसके साथ ही अन्य शुद्धताओं वाले सोने में भी तेजी देखी गई। 22 कैरेट वाला सोना 97,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि 20 और 18 कैरेट वाला सोना क्रमशः 89,000 और 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर फ्यूचर्स का सोना कुछ समय के लिए 1,00,000 रुपए से ऊपर जाकर 1,04,84 रुपए प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इसमें एक दिन में लगभग 2% की बढ़त देखी गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड के 4 वर्षों बाद 30 जून से फिर शुरू होने जा रही है। ये यात्रा उत्तराखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के संयुक्त निरीक्षण में आयोजित होगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा है कि समाज की अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त किए बिना वास्तविक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय पे चर्चा 2025 को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार ने ये बात कही।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति को जब रहने के लिए मकान मिल जाए, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, अस्वस्थ होने पर उसको दवाइयां मिल जाए, उसके बच्चों को शिक्षा के अच्छे प्रबंध मिल जाए, तभी सही मायने में सामाजिक न्याय के विकास की अवधारणा पूरी होती है।
दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि दोपहर के समय गर्म हवा के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। आज का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहेगा। कल का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान की विषय वस्तु निर्धारित करने में सर्वोच्च होते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज आचार्य विद्यानंद स्वामी की जयंती पर विद्यानंद प्रज्ञापीठ का लोकार्पण किया। पृथ्वी दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक विशेष अभियान की शुरुआत की। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि भाजपा दिल्ली में लोगों को सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परीक्षा में सफल हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।